الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. जी, तो इस क्लास के अंदर हम अपने हजरत पीर सत्तार नक्शबंदी दामत बरकातहू उनकी किताब मिसाली मद में से पढ़ते हैं। इस किताब में बेसिकली हजरत जी के जो बहुत सारे बयानात हैं जो हजरत ने रमजान मुबारक के एतिकाफ के मौके पर किसी साल में किए थे, तो उन्हीं को बेसिकली ये कलमबंद कर दिया गया है। तो इस किताब को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने मिसाली बाप का मतलब पढ़ा, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ मौजूद जो है वो आगे पीछे करके पढ़े हैं। बिल्कुल तरतीब में एग्जैक्टली नहीं पढ़े थे। आखिरी मौजू जो हमने रमजान मुबारक से पहले, या आखिरी उनवान जो रमजान मुबारक से पहले पढ़ के मुकम्मल किया था, वो था मिसाली बेटा। आज फिर आखिरी इसका उनवान रह गया है, या आखिरी बयान रह गया है इस किताब का, वो है मिसाली शागिर्द। तो वो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज। जैसे कि वैसे तो हर मौजू के शुरू करने से पहले ही हमने यानी ये याद दहानी करवाई थी अपने आप को भी और तमाम सुनने वालों को भी कि ये इस्लाही बयान तरबियत से मुतालिक ये बयानात हैं। तो इनके अंदर जो है ना, वो इस जो बहुत अहम ये बात होती है कि हमारी नीयत जो है वो सुनने में और सुनाने में भी और सुनने में भी हमारी नीयत अपनी इस्लाह हो, अपनी तरबियत हो। क्योंकि शैतान जो है वो हमारा हमेशा का दुश्मन है, तो वो इवन दीन का इल्म सीखने के या तरबियती इल्म सीखने के मौके पर भी वो हमें बहकाना छोड़ता नहीं है। तो उसकी यही कोशिश रहती है कि अगर ये इस्लाही बात सुनने के लिए तैयार हो भी गया है, ठीक है, पहले तो वो रोकता है ना, वो तो किसी तरीके से कोशिश करता है कि इस्लाही बात तो ये सुने ही नहीं, तरबियत के किसी उनवान पर तो ये यानी इसमें शरीक ही ना हो, ठीक है। तो कोशिश तो वो बहुत करता है, लेकिन वो इतना रेजिलियंट है और इतना जो है ना वो उसकी हिम्मत है कि वो अगर नाकामी उसको हो जाती है अपने किसी गोल में, अपने किसी संगे मील में, तो उसके बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ता, वो काम छोड़ता नहीं है। तो अगर उसको नाकामी हो गई और बनी आदम में से किसी ने तरबियत के मौजू पर बात सुननी शुरू कर दी, पढ़नी शुरू कर दी, तो उसके बाद वो क्या कोशिश करता है कि ये सुन तो रहा है, चलो सुन रहा है, मैं उसको नहीं रोक सका यहाँ तक, लेकिन अब जो है ना मैं इसके सुनने की नीयत को खराब कर दूँ। और ये जो है ना, ये तरबियती बातें सुने तो दूसरों की तरबियत के लिए सुने, दूसरों की इसलाह के लिए सुने, उनको अपने ऊपर लागू ना करें ये, ठीक है। तो इस वजह से ना हम शैतान के इस जद के ऊपर, इस टारगेट के ऊपर अभी भी हैं, और ये मरते दम तक रहेंगे। जब तक मर नहीं जाएंगे, इस दुनिया से चले नहीं जाएंगे ना, उस वक्त तक शैतान से हम आजाद नहीं हो सकते, हम बेफिक्र नहीं हो सकते। तो ड्यूरिंग द क्लास भी शैतान हमारी नीयत को खराब करने की कोशिश कर रहा है, करता रहेगा, ठीक है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और इस निज़ाम को हम बदल नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आजमाइश रखी ही इसी शक्ल के अंदर है, ठीक है। तो लाजमी है कि हम इन सारे बयानात को अपनी इस्लाह की नीयत से सुने। अब जो है वो पीछे जो बयानात थे, बाप बेटा और दामाद और शौहर और ससुर, ठीक है, हत्ता के भाई भी, तो वो तो जरा यानी या तो वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स थी, तबीयी जो ताल्लुकात होते हैं इंसान के, या वो ससुराली रिलेशनशिप्स थी, ठीक है, तो वो फिर इंसानों के पर्सनल के आपस में यानी घरेलू किस्म के ताल्लुकात से मुतालिक बयानात थे। तो उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इसका जोर होता है कि भाई इसमें जज्बात भी गालिब होते हैं ना इंसान के घरेलू मामलात में, और खुसूसन ससुराली मामलात के अंदर, तो उसमें तो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसका फोकस होता है कि दूसरे की इसलाह, ठीक है ना, क्योंकि वो गलत कर रहा है घर के अंदर, वो गलत कर रही है घर के अंदर, है ना, शौहर की इसलाह की बात हो रही होगी, तो वो जो है ना वो यही सोचेगा कि नहीं, ये तो बीवी गलत करती है, मैं को थोड़ी गलत करता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उसी तरह हर रिश्ते के अंदर, तो उसमें तो बड़ा क्लियर ये डिफाइंड था कि हाँ दूसरे की ही इसलाह की इंसान को फिक्र पड़ी रहती है। लेकिन मिसाली शागिर्द के मौजू के अंदर जो है ना वो बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता कि मिसाली शागिर्द के बयान के अंदर भी हमें जो है ना वो दूसरे की इसलाह की फिक्र पड़ी रहेगी। अब इसके अंदर हमारा काउंटर पार्ट कौन है, ठीक है ना, जैसे सुसर का बयान हो रहा था तो काउंटर पार्ट जो था वो दामाद या बहू थी, बहू का बयान हो रहा है जैसे खवातीन के अंदर आजकल मिसाली बहू का मौजू चल रहा है, तो उसमें काउंटर पार्ट जो है वो उसका जो ऑपोजिट रिलेशनशिप है वो सास है या सुसर है, ठीक है। तो अब शागिर्द के अंदर ऑपोजिट रिलेशनशिप क्या होती है, उस्ताद, ठीक है ना, उस्ताद यानी शागिर्द की एग्जिस्टेंस या शागिर्द की डेफिनेशन ही उस वक्त होती है जब कोई उस्ताद मौजूद हो, यानी ये इल्म हासिल करने के प्रोसेस के अंदर किसी उस्ताद से इल्म सीख रहा हो, तो इसमें भी एक काउंटर रिलेशनशिप है कि जिसकी इसलाह की जो है ना वो इंसान को फिक्र पड़ी रह सकती है इस कदम के बयान सुनने में कि भी मैं तो शागिर्द हूँ, मेरा क्या कसूर, मुझे तो जो उस्ताद साहब पढ़ाएंगे जैसा पढ़ाएंगे तो मैं तो वैसे ही पढ़ूंगा और वैसे ही जो है ना वो मैं बनूंगा, तो सारा कसूर जो है वो टीचर का है, टीचर ही अपना काम सही तरह से नहीं करता तो मेरा क्या कसूर है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें चूंकि जज्बात वाला मामला ज्यादा गालिब नहीं होता, अंदर से उस्ताद साहब जो है वो पिटाई कर रहे हों और उस्ताद साहब जो है ना वो जलील रुसवा कर रहा हूँ, तब तो शागिर्द के अंदर भी एक जज्बाती उनसर गालिब हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर शागिर्द जो है ना एक नो केयर किस्म की कैफियत में होता है, बिल्कुल ही जो है ना वो उसको परवाह नहीं होती अपने इल्म हासिल करने के बारे में, उसको संजीदगी नहीं होती, वो इस बात को जो है वो बहुत अहमियत नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो शागिर्द की इसलाह जो होती है ना वो फिर इस एस्पेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होती है कि वो इल्म की अहमियत को समझे, इल्म हासिल करने की अहमियत को समझे, ठीक है। तो इस वजह से इस मौजू के अंदर हजरत ने इल्म के फजीलत और अहमियत के ऊपर भी काफी ज्यादा बात करी है, और इंशाल्लाह हम भी इसको इसी तरह से ही लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। तो इस तमहीद के साथ जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं किताब में से। सबसे पहला जो सब टाइटल या ज़ेनी उन्वान हज़रत ने इसका बनाया, या हज़रत ने तो एक्चुअली बयान के अंदर कोई ज़ेनी उन्वान नहीं रखा होता, लेकिन जब किताब की शक्ल में उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है तो फिर ट्रांसक्राइब करने वाले फिर ये सब टॉपिक्स बना देते हैं। तो पहला टॉपिक उन्होंने बनाया इल्म की अहमियत, ठीक है। तो फरमाते हैं कि बास किताबों में लिखा है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूरुन, ठीक है, कि इल्म रोशनी है, नूर है, रोशनी के लिए ज़िया का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़िया का जो लफ्ज है ना बहुत से वो ये जो बल्ब की रोशनी होती है या जो चिराग की रोशनी होती है उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, नूर का जो लफ्ज है ना ये बड़ी रूहानी अपने अंदर हैसियत रखता है, ठीक है। तो अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बारे में जो है वो कुरान मजीद में नूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नूर उस समावाती वल अर्द, ठीक है। तो अल्लाह से, अल्लाह तो सरचश्मा है तमाम की तमाम रूहानियत का, ठीक है, तो नूर का जो लफ्ज है ये खास रूहानी रोशनी के साथ इसका ताल्लुक है, तो अल इल्म नूरुन, ठीक है ना, ये इल्म जो है वो दुनियावी फिजिकल मादी खाली रोशनी नहीं है बल्कि बड़ी इसके अंदर रूहानियत है, और इससे जो है ना वो एक सोर्ट ऑफ इन सम एस्पेक्ट जो है वो यानी वो फिजिकल रोशनी भी उसको हासिल हो सकती है किसी ना किसी तरीके से, दुनियावी मामला में भी उसको रोशनी हासिल हो सकती है। बहरहाल तो अल इल्म नूर, ठीक है, फजाइल इल्म के अंदर ये हदीस के तौर पर नकल किया है इसको। तो इससे ये नतीजा निकलता है, कंक्लूजन, के जहालत यानी ना जानना ये अंधेरा है, ठीक है, डार्कनेस, लिहाजा दीन इस्लाम हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। क्या मतलब? अल इल्म नूरन, अब दीन नूरन तो नहीं फरमाया, अल इल्म नूरन फरमाया, ठीक है। तो दीन फिर क्या है? वो इल्म है कि जो के अंधेरे से निकाल करके रोशनी में लेकर के आता है। दीन है क्या? दीन इल्म है, ठीक है ना। सबसे पहले इल्म है, बाद में जो है वो अमल, और बाद में जो है वो दूसरी चीजें आती हैं। सबसे पहले इल्म, ठीक है ना, के जिसको के नूरे हिदायत भी कहा गया, जिसको के रास्ता दिखाने का जो है वो तरीका कहा गया, जो भी आप इसको कहें, ये सारा का सारा इल्म ही है। तो दीन इस्लाम ने इल्म की इतनी अहमियत बयान की है कि इतना किसी और ने बयान नहीं की है, यानी किसी और आइडियोलॉजी ने, किसी और फिलॉसफी ने, किसी और ट्रेडिशन ने, किसी और कल्चर ने इल्म के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं किया जितना कि दीन इस्लाम ने किया है, ठीक है। तो ये बात हमें आज पता चली है? नहीं, हमें तो ये बहुत पहले से पता है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को तो किसी ना किसी दर्जे में ये बात पता ही होती है, ज्यादा एम्फेसिस के साथ ना भी पता हो लेकिन फिर भी पता चल जाती है। भाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कि हमारा दीन जो है वो एजुकेशन के ऊपर कितना एम्फेसाइज करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए इस दौर, इस जमाने से रेलेवेंट एक बहुत अहम बात है, इस जमाने में जिसमें कि हम जिंदा हैं, हालात हाजिरा, ठीक है ना, वो क्या है? इल्म के बारे में कि ये जो अहमियत है ना इल्म की, जो कि मुसलमानों को कुरान मजीद से मिलती है और हदीस मुबारका से मिलती है और अपने असलाफ की जिंदगियों से मिलती है, नजर आती है सारी की सारी, ठीक है। तो मुसलमानों को तो ये बात पता चल ही जाती है, ठीक है ना। अब बेशक वो समझ में नहीं आती वो और बात है, लेकिन पता तो चल जाती है। लेकिन ठीक है, लेकिन वॉट इज सो रेलिवेंट अबाउट इट टू आवर टाइम्स, आवर डे एंड एज, वो क्या है कि ये अहमियत का होना हमारे दीन के अंदर, ठीक है ना। क्या कहने जा रहा हूं, अगर कोई गेस करना चाहे कि इस अहमियत का हमारे दीन के अंदर इल्म के ऊपर होना, फोकस का होना, ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं पता बल्कि ये मुसलमानों के दुश्मनों को भी पता है, ठीक है। ये बात जो है वो सिर्फ आपको और मुझे नहीं पता बल्कि जो हमारे दुश्मन हैं, सबसे पहला दुश्मन शैतान, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है वो शयातीन मिनल इंस वल जिन, ठीक है, जो कि इंसानों की शक्ल में भी शयातीन मौजूद हैं और जिनों की शक्ल में बाकी शयातीन मौजूद हैं, उनको भी ये बात पता है, ठीक है। तो जो इंसानों की शक्ल में शयातीन मौजूद है ना, उन्होंने इस बात को समझा कि इनके दीन के अंदर इल्म की कितनी अहमियत है और क्यों इतनी अहमियत है, और फिर उन्होंने अपनी इस समझ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, ठीक है ना। उन्होंने इस समझ को या इस फोकस को, इस एम्फेसिस को जो कि हमारे दीन के अंदर इल्म के ऊपर डाली गई है, उन्होंने इस एम्फेसिस को भरपूर अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। भला कैसे? भला कैसे? ये अगर आपसे सवाल किया जाए, आपको जिसका जवाब देने की कोशिश करें, दैट्स व्हाई दे हैव मेस्ड अप द डेफिनेशन ऑफ इल्म, ठीक है ना। उनको ये बात तो पता है कि इस दीन के अंदर, इस दीन के मानने वालों के ऊपर इल्म हासिल करने को कितना ज्यादा अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा भाई ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है, है ना, कि हमें इनको ये समझाने की, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इनका तो अपना कुरान कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना। पढ़ने से जो है वो इनका कुरान जो है वो शुरू होता है, इकरा से इनकी वही शुरू हुई है, ठीक है। तो इस एम्फेसिस को करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से मौजूद है उनके अंदर। हमें सिर्फ क्या करना है कि हम जो है ना वो इस इल्म के कंटेंट को तब्दील कर दें, इस इल्म के मवाद को तब्दील कर दें और इस इल्म के मिजाज को तब्दील कर दें, बाकी काम जो है ये खुद कर लेंगे, ठीक है ना, बाकी काम ये खुद कर लेंगे, बाकी आप लोग सारी बातें गलत कर रहे हैं, अभी रहने दें, ठीक है ना। दीन के इल्म को दुनिया के इल्म से जोड़ दिया वगैरह, नहीं, ये सब नहीं है। आप अल्लाह आपको समझ आता, ठीक है ना। पहली बात सही थी कि दे हैव मेस्ड अप द डेफिनेशन ऑफ फिल्म, ठीक है। तो हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इल्म जो है ना वो एब्सोल्यूट इल्म जो है ना वो हमारे दीन के अंदर नहीं कहा गया हुआ, ठीक है ना। एब्सोल्यूट इल्म नहीं दिया दिया हुआ कि भाई जो भी है ना हर चीज का इल्म हासिल करो, हर चीज जो है ना वो जो और हर सोर्स से जो है वो इल्म हासिल करो, ठीक है ना, ये नहीं कहा गया। बल्कि हमारे दीन के अंदर इल्म जो है वो उसका एक मकसद है, एक मकसदियत के साथ इल्म हासिल करने का हमारे दीन के अंदर इल्म यानी हुक्म दिया गया है और उसके ऊपर जो है वो जोर दिया गया है, मकसदियत के साथ। मकसदियत भी कुरान मजीद से ही हमें पता चल जाती है, अल्लाह का कलाम है ना भाई, राइट, हमारे परवरदिगार का कलाम है ना। तो परवरदिगार हमें बता देता है, ये जो बुनियादी बुनियादी बातें ये सारी हमें कुरान मजीद से अल्लाह के कलाम से मिल जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ठीक है, कि सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो खशियत रखते हैं, अल्लाह की जो खशियत रखते हैं ना वो तो उसके बंदों में से उलमा है। मौलवी साहब 8 साल दरसे निजामी करने वाले नहीं, इल्म रखने वाले। जाहिल अल्लाह ताला से खशियत नहीं रखता, इल्म रखने वाला अल्लाह ताला से डरता है या अल्लाह की नाराजगी से डरता है, ठीक है ना। तो क्या इतने कॉमन सेंस अब समझ में नहीं आ सकती हमारे कि हमारा दीन किस इल्म को प्रमोट करता है, किस इल्म के ऊपर जो है वो इतनी जो है वो अहमियत डालता है कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला की खशियत पैदा हो। मौलवी बनने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, राइट, दरसे निजामी पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, इल्म हासिल करना, साइंस पढ़ना, राइट, मैथमेटिक्स पढ़ना, ठीक है, और ज्योग्राफी पढ़ना और जियोलॉजी पढ़ना और जो है वो जो भी आप लोग एक से कंप्यूटर साइंस पढ़ना, ठीक है ना, लीगैलिटीज का इल्म हासिल करना, लॉ का इल्म हासिल करना, फाइनेंस का इल्म हासिल करना, एस्ट्रोनॉमी का इल्म हासिल करना, नॉट एस्ट्रोलॉजी, खैर एस्ट्रोनॉमी का इल्म हासिल करना, ठीक है ना, हर चीज का इल्म हासिल करना। लेकिन वो इल्म कैसा होना चाहिए कि जिससे कि अल्लाह ताला की खशियत पैदा हो, ना कि अल्लाह ताला की खशियत जो है वो कम हो, जो पहले थी वो भी कम हो जाए, और ना ये कि अल्लाह ताला की खशियत मर जाए, खत्म हो जाए, राइट, बल्कि अल्लाह ताला के ऊपर ही डाउट शुरू हो जाए कि अल्लाह है भी कि नहीं है, राइट, नबी सच्चे थे भी कि नहीं थे, ना कि ये हो जाए, राइट। तो इल्म एक मकसद के साथ है, अगर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा तो फिर वो इल्म जो है वो इल्म यानी मकसूद इल्म नहीं है, वो डिजायर्ड इल्म नहीं है, बल्कि वो नुकसानदेह इल्म है। दुनिया के अंदर 4 पैसे कमा लोगे, बल्कि 8 पैसे कमा लोगे, बल्कि 8 लाख पैसे भी कमा लोगे, आखिरत के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे तुम्हारी तुम्हारी हमेशा हमेशा की जिंदगी, राइट, क्या गलत कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं। जिस इल्म को हासिल करके, ठीक है ना, खशियत अल्लाह ताला की जो पहले थी अगर घर के माहौल के अंदर थोड़ी पैदा भी हुई थी वो भी खत्म हो गई, तो ऐसा इल्म हमारा दीन कह रहे हैं हासिल करने को, इस तरीके से वो इल्म हासिल करने को कह रहे हैं हमारा दीन, राइट, इकरा। तो बाप जो है ना आजकल कहता है मेरी बेटी जो है ना वो तो पढ़ना चाहती है, तो मैं कैसे उसके रास्ते की रुकावट बन सकता हूँ, मैं कैसे उसको कह सकता हूँ कि वो ना पढ़े, राइट। तो उस बाप के अकल के अंदर इतनी सी बात नहीं आ रही कि जिस इल्म को पढ़ करके वो जहन्नुम में जाएगी, राइट, क्योंकि उसके अकायद खराब हो जाएंगे, उसका नजरिया खराब हो जाएगा, उसकी प्रायोरिटीज जो है मेस्टअप हो जाएंगी। तो तुम उसको वो वाला इल्म हासिल करने से जो है वो रोकना जो है वो कोई तौहीन समझ रहे हो, कोई जुल्म समझ रहे हो उसको, राइट, गोया कि यही बात है ना, मेरी बेटी जहन्नुम में जाना चाहेगी तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ, राइट, मैं कैसे उसको समझा सकता हूँ कि बेटा जहन्नुम में मत जाओ, इसलिए कि हम इन दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि बाप साहब जो होते हैं ना वो खुद ही इंडोक्ट्रिनेटेड है, वो भी तो इसी इल्म के
पले हुए हैं ना, वो इसी इल्म के बने हुए हैं, इसी इल्म के जो के खशियत को कम करने वाला और इवेंचुअली उसका गला घोंट देने वाला इल्म था, अब्बा हुजूर का अपना खशियत का गला घुट चुका है, अब्बा हुजूर का अपना गला घुटा हुआ है। वो क्या इस बात को समझेंगे कि उनकी बेटी जो है वो जिस इल्म की बात कर रही है वो इल्म उसको जहन्नुम में लेकर के जाएगा। वो तो पढ़ना, उनके नजदीक दिस इज एन एब्सोल्यूट वर्ड, पढ़ना, अब वॉट एवर पढ़ना, फ्रॉम हुएवर पढ़ना, हाउ एवर पढ़ना, बस पढ़ना। वो समझते हैं पढ़ना जो है वो कामयाबी की जमानत है, राइट? चाहे जैसे भी पढ़ना हो। गलत कह रहा हूं, कोई बोले ना कि नहीं गलत कह रहे हैं आप। तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ठीक है? तो इंसानियत के नाम अल्लाह का पहला पैगाम। अब बड़े गौर से सुने, हजरत ने क्या जबरदस्त दलायल दे करके यहां पर बात को समझाया है कि असल चीज तो इल्म है, राइट? इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं, और इल्म है तो फिर आगे कम से कम बात बनेगी, बात बन सकती है, और अगर इल्म नहीं है तो नई बात बन सकती, ठीक है? तो फरमाते हैं कि आप गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई वो अल्लाह का अपने बंदों के नाम पहला पैगाम था, राइट? उस एज के बंदों के नाम, वरना मूसा अलैहि सलाम के जमाने में भी अल्लाह की तरफ से पैगाम आ चुके थे, ईसा अलैहि सलाम के जमाने में भी आ चुके थे, इब्राहिम अलैहि सलाम के जमाने में भी आ चुके थे। इस दौर, इस जमाने में जो कि हमारा दौर कहलाता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम का दौर, उस दौर के लिए अल्लाह ताला का ये पहला पैगाम था, ठीक है? वो अल्लाह का अपने बंदों के नाम पहला पैगाम था। ये पैगाम तौहीद से मुतअल्लिक भी हो सकता था, इसलिए कि तौहीद की इतनी अहमियत है कि जो बंदा मुशरिक होगा वो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता, राइट? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अन युशरक बिही वो यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशाउ, बेशक अल्लाह ताला इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इससे कमतर हर बात को जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है, जो चाहता है अल्लाह ताला माफ कर देता है, इसके अलावा शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, ठीक है? तो ये इतनी अहमियत वाली बात थी, तो अल्लाह ताला पहला पैगाम यही भेजते कि तौहीद के ऊपर तुम पक्के हो जाओ, राइट? तौहीद के ऊपर तुम पक्के हो जाओ। अब मुझे ये बताएं, आपसे सवाल है कि तुम तौहीद पर पक्के हो जाओ, ये क्या चीज है? इसको इखलास कहते हैं, आप सब, मेरे ख्याल में जवाब यही होगा, इखलास नहीं। क्या इसको अमल कहते हैं कि तुम तौहीद के ऊपर पक्के हो जाओ, या इसको इल्म कहते हैं? इल्म, अमल, इखलास, इन तीनों में से ये जुमला जो है वो किस कहाँ फिट होता है कि तुम तौहीद में पक्के हो जाओ? ये इल्म है, ये अमल है, ये कोई और चीज है? चलिए सिर्फ इल्म और अमल के दरमियान से ही बताते हैं कि ये क्या चीज है। ये इखलास है, राइट? अमल है, अमल है, पक्के हो जाओ, ठीक है ना? अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को ऐसे अलाइन करो कि तौहीद के ऊपर जो है ना वो पक्के हो जाए, शिर्क के अंदर बिल्कुल भी ना रहे। ये इसका ताल्लुक अमल के साथ है, इसका ताल्लुक अमल, ये ताल्लुक नहीं, ये अमल है, बस ये अमल है, ठीक है ना? और इखलास जो है वो भी है, अमल भी है, इखलास भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली वही अमल के ऊपर भी नहीं दी, इखलास के ऊपर भी नहीं, नाजिल फरमाई, ना अमल के ऊपर ना इखलास के ऊपर, राइट? इखलास वाली कौन सी सूरत है? सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो तो पहली कहीं आती ही नहीं है, काफी बाद में जाकर के नाजिल हुई, सूरह इखलास, ठीक है? और अमल ये है नहीं, तौहीद पे पक्के हो जाना ये सॉरी, ये इल्म नहीं है, ये अमल है। तो अल्लाह ताला ने अमल वाली वाला हुक्म नहीं नाजिल फरमाया पहली वही के अंदर, ठीक है? तो ये इतनी बड़ी अहमियत वाली बात थी, तो अल्लाह ताला पहला पैगाम यही भेजते हैं कि तौहीद के ऊपर तुम पक्के हो जाओ, ठीक है ना? इस पे पक्के हो जाने से तुम मेरी क्या कहते हैं, वो जो मेरी ना माफ करने वाली वईद है ना, तुम उससे बच जाओगे। नहीं, आगे फरमाते हैं कि अगर ये नहीं था तो अल्लाह ताला रिसालत के बारे में बता देते हैं कि तुम मेरे रसूलों को मानो, और उनकी बातों पर अमल करो, ठीक है ना। मानना ये भी अमल है, और बातों पर अमल करना तो इसमें तो लफ्जी अमल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसलिए कि रिसालत के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये भी अमल है, ठीक है ना, ये भी अमल है, सही है। तो अमल का हुक्म नहीं आया, रिसालत पे की भी अहमियत नहीं आई पहली वाली वही के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अमल से रिलेटेड था। तो रिसालत की अपनी अहमियत है। अच्छा चले, रिसालत का भी तस्करा ना हो तो चलो कयामत का ही तस्करा कर दिया जाता, इसलिए कि कयामत का दिन इंसान की जिंदगी का बहुत अहम दिन है। उसको कुरान मजीद में यौमुत तगाबुन कहा गया है। चुनाचे इरशाद बारी तआला है, यौम यजमाउकुम लियौमिल जमई ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ठीक है, कि उस दिन जब अल्लाह तुम्हें रोजे हशर में इकट्ठा करेगा, वो ऐसा दिन होगा जिसमें कुछ लोग दूसरों को हसरत में डाल देंगे। तगाबुन का मानी होता है फैसला करना, निखार कर देना, फर्क कर देना। लिहाजा यौम तगाबुन का मानी ये हुआ कि ए इंसान, ये तेरे लिए फैसले का दिन है, या तो जिंदगी की बाजी जीत जाएगा या हार जाएगा। अगर ये हार जीत का दिन था तो उसके बारे में बता देते, यानी पहली वही में कयामत का तस्करा छेड़ते ना, पहली वही में रिसालत का तस्करा छेड़ते ना, पहली वही में तौहीद का तस्करा छेड़ते ना। तौहीद इख्तियार करो, रिसालत के ऊपर जो है वो सबसे अहम चीज जो है वो तुम रिसालत रिसालत को दो, या ये कि कयामत को सबसे अहम समझो, ठीक है। मगर अल्लाह ताला ने जो पहला पैगाम भेजा, ना तो वो तौहीद से मुताल्लिक था, ना रिसालत, और ना ही कयामत के दिन के मुताल्लिक, बल्कि वो इल्म से मुताल्लिक था। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। पढ़ो ए परवरदिगार, अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है, पढ़ो, और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करम वाला है जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। इल्म की इतनी अहमियत है कि पहला पैगाम जो अल्लाह ने बंदों को भेजा वो इल्म से मुताल्लिक था, लिहाजा इल्म बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। क्या मतलब, इस सारी बहस और इतनी सारी जो है ना वो यानी जोर जोर से आपको सुनाने का मकसद क्या था, कि इल्म पहले से हासिल है, हासिल किए बगैर ही हासिल है, इस अजम्पशन से अपने आप को बचाएं, इस गुमान से अपने आप को बचाएं कि मालूम तो मुझे पहले से है और बिल्कुल सही सही चीजें मालूम है, ठीक है ना, मुझे मालूम भी है और जो मालूम है वो बिल्कुल सही भी है, ये एक गुमान है, ठीक है ना। बल्कि इसके बारे में जो उर्दू का प्रॉपर लफ्ज बनता है ना वो है खुश गुमानी, खुश फहमी, ये ज्यादा प्रॉपर लफ्ज है। खुश फहमी से अपने आप को निकालें, ठीक है ना, अपने इस खुशफहमी के कैसल को, इस खुशफहमी के जो हमने किले बनाए हुए हैं ना, इस किले को तोड़ने की जरूरत है, कि हमें पता भी है और बिल्कुल ठीक ठीक पता भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हमें नहीं पता है और हमें बल्कि गलत पता है, हमें बहुत बातें गलत पता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ना पहले पता करने की कोशिश, पहले पता करने की मेहनत शुरू करें, ठीक है। और जब तक ये इल्म सही नहीं होगा, उस वक्त तक इसके ऊपर अमल की इमारत नहीं खड़ी हो सकती, गलत अमल की इमारत ही खड़ी हो सकती है गलत इल्म के ऊपर, गलत इल्म के ऊपर सही अमल की इमारत नहीं खड़ी हो सकती। ये हमें एक ऐसा मुगालता काफिर ने लगा दिया है कि जिसकी वजह से जो है ना वो हम मेहनत पे मेहनतें किए जा रहे हैं, कौन सी वाली, अमल वाली मेहनत, राइट, और उसके ऊपर हमने इमारतें नहीं, हमने स्काई स्क्रेपर्स खड़ी करी हुई हैं, अमल की स्काई स्क्रेपर्स, समझते हैं ना स्काई स्क्रेपर किसको कहते हैं, आसमान को छूने वाली इमारतें, राइट। अभी गए थे ना सारे माशाल्लाह मदीना तैयबा ईद मना के आ रहे हैं, कोई जो है वो मक्का मुकरमा में ईद मना के आ रहा है, को जो है वो पूरा महीना जो है वो हरमैन के अंदर रह करके आ रहा है, कोई एतकाफ करके आ रहा है, ये सब क्या है? अमल है, अमल करने गए थे ना सारे के सारे, ठीक है ना? और कितने गए थे? माशाल्लाह इतना रश था कि जितना शायद तारीख ने कभी नहीं देखा होगा इतना रश। क्या करने गए थे? इल्म हासिल करने गए थे, मक्का मुकरमा में और मदीना तैयबा में इल्म हासिल करने गए थे। कौन गया था इल्म हासिल करने? जरा हाथ उठा के मुझे बताया ना, कौन गया था इल्म हासिल करने के लिए? सारे के सारे अमल करने के लिए गए थे, इस अजम्पशन के ऊपर कि इल्म का तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इल्ला माशाल्लाह कोई होगा कि जो कि ना मैंने नहीं, इल्म का चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैं जो हूँ ना बस वो अभी थोड़ा सा इल्म है तो उसके ऊपर जरा अमल करके आता हूँ, फिर मैं इल्म हासिल करने के ऊपर लगूंगा, वापस लग जाऊंगा हासिल करने के ऊपर। कितनों के दिल के अंदर ये वाली नीयत थी, ठीक है? ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, पूरी उम्मत लगी हुई है हर महीने के अंदर इतकाफ करने के ऊपर, राइट? हम तो हैरान होते हैं कि भाई यानी इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आसमानों को छू रही है, और जो है वो महंगाई इतनी हो गई है, और फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पता नहीं लग रहा है कि लोग एक दूसरे का गला काट लेंगे, कोई गला ही नहीं काट रहा, माशाल्लाह सारे जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, गला कोई नहीं काट रहा, या काट रहा है तो वो नजर नहीं आ रहा किसी को, है ना? और काटते भी माशाल्लाह आजकल तो IT के जरिए से काटते हैं ना, तो इस वजह से खून भी नजर नहीं आता, राइट? खून वून कोई नजर नहीं आता, समझते हैं गली कोटिंग कोई नहीं कट रहा, करप्शन होती है, किसी को लूट रहे होते हैं, किसी को फूट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि खून बहता हुआ नजर नहीं आता, तो समझते हैं कि सब बड़ा यानी इट्स ऑल पीसफुल, इट्स ऑल पीसफुल, राइट? तो चलो उमरा करने के लिए चलते हैं, ठीक है? तो अमल के ऊपर कितना एम्फेसिस है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं अमल के ऊपर, आसमानों को छूने वाली इमारतें खड़ी हो रही हैं अमल के ऊपर, लेकिन इल्म का मामला क्या हो रहा है, ठीक है ना? जी अच्छा लफ्ज आपने किया, व्हाइट कॉलर करप्शन, ठीक है? किसी ने लिखा कुछ करने से पहले इल्म हासिल करना चाहिए, ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन? जी यही तो कह रहे हैं इतनी देर से, अमल करने से पहले इल्म हासिल करना, ठीक है ना? क्या मदीने जाने से पहले भी इल्म हासिल करना होगा? जितना हम एम्फेसिस कर रहे हैं ना अमल के ऊपर, उतना एम्फेसिस जो है ना वो हमें इल्म के ऊपर करने की जरूरत है, ठीक है ना? और इल्म का मतलब यहाँ पे मालूमात वाला इल्म नहीं है, राइट? कि मालूमात हासिल करनी, मालूमात हासिल करनी, सोच को दुरुस्त करने वाला इल्म, तसव्वुरात को दुरुस्त करने वाला इल्म, ठीक है ना? मालूमात वाले इल्म की बात नहीं हो रही, इसके बारे में तो दूसरे हमारे मशायख के अकवाल है ना, मालूमात वाले इनकी बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, सोच को दुरुस्त करने वाला है, ठीक है ना? नियतों को दुरुस्त करने वाला, प्रायोरिटी समझते हैं ना, तरजीहात, तरजीहात को दुरुस्त करने वाला है। हमें तो समझ में नहीं आता ये कि क्या कह रहे हैं, ये कौन सा इल्म होता है तरजीहात को दुरुस्त करने वाला है, राइट? पता है आपको क्या होता है तरजीहात को दुरुस्त करने वाला इल्म क्या होता है, प्रायोरिटीज को दुरुस्त करने वाला इल्म क्या होता है? हमारे नजदीक इल्म अगर है भी कुछ अहमियत ना, बस इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? फैक्ट्स एंड फिगर्स, फराइज का इल्म, ठीक है ना? फराइज का इल्म मसला यहाँ पर भी है, फराइज जो है वो क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, ठीक है ना? इस वजह से जो है ना वो फराइज का लफ्ज भी जो है ना अभी यहाँ पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमारे उर्दू जुबान के हिसाब, जो कि हमारी जो ऑडियंस है यहाँ पर, आप लोग सारे के सारे उर्दू समझने वाले हैं ना, अगर ना होते तो फिर इस क्लास में ना होते, तो उर्दू के अंदर जो है ना लफ्ज फराइज से भी इस बात समझ में नहीं आती, इस वजह से प्रॉपर लफ्ज जो है ना उम्मीद है कि उससे ज्यादा बात समझ में आएगी, जिम्मेदारियों का इल्म, जिम्मेदारियों का इल्म, हमारे ऊपर क्या जिम्मे आता है, जिम्मेदारियां, अल्लाह ने क्या जिम्मे लगाया है हमारे, जिसमें से एक जिम्मेदारी नमाज है, एक जिम्मेदारी तहारत है, एक जिम्मेदारी हज है, एक जिम्मेदारी रोजा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है? तो जिम्मेदारी का इल्म, और वो एक चीज है, बाकी प्रायोरिटीज, ठीक है ना? तरजीहात, कौन, हु कम्स फर्स्ट, वॉट कम्स फर्स्ट, वॉट कम्स सेकेंड, वॉट कम्स थर्ड, ठीक है? भागे भागे जो है ना वो हरम जाने से जो है ना ये प्रायोरिटीज पर कुछ कक समझ में नहीं आता, बल्कि उल्टी मेस्टअप ही हो जाती है हमारी प्रायोरिटीज। मैं आपको रोक नहीं रहा भाई, ठीक है जाएं, बहुत अल्लाह ने माल दिया है, बहुत टाइम दिया है ना, टाइम फारिग दिया है, कहाँ से फारिग टाइम, इस उम्मत के पास टाइम फारिग क्यों है इतना, राइट? आज के लोगों के, आज के मुसलमान के पास इतना फारिग टाइम क्यों है? तो इतना फारिग टाइम है जा करके होकर के आते हैं बार बार वहां से, ठीक है? इल्म हासिल करने के लिए टाइम ही नहीं किसी के पास, तो इसी वजह जाहिर सी बात है जब इस तरफ कोई फोकस ही नहीं है, इधर की कोई जो है वो कमी ही महसूस नहीं हो रही कि भाई मेरी समझ में कमी है, मेरी प्रायोरिटीज में मेस्टअप हूँ मेरी मेरी प्रायोरिटीज, तो अब जाहिर सी बात है क्या करूं भाई, मैं इतना टाइम है, इतना पैसा है, क्या करूं, चलो 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 तो हराम चलते हैं, चलो 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 मदीना तैयबा में इतकाफ करके आते हैं, राइट? तो वो औरत जो है जिसको के घर में इतकाफ करना था वो ही पहुंची भी होती है वहां पे इतकाफ करने के लिए। सच मेस्ड अप प्रायोरिटीज, राइट? पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं, नफ्स को खुश कर रहे हैं, खुदा को खुश करने के तरीके से नफ्स को खुश कर रहे हैं, ये प्रायोरिटीज मेस्ड अप होने की सबसे बड़ी दलील है। जिसको खुश करना था उसको करने के बजाय जो है जिसको नहीं करना था उसको खुश करें करने के लिए अमल करे चले जा रहे हैं उसको, ठीक है ना? शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया, खुश किसको करना था? अल्लाह को। अल्लाह को खुश करने के बजाय शेख को खुश किए चले जा रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर करके शेख को खुश किए चले जा रहे हैं, व्हाट अ मेस्ड अप प्रायोरिटी, ठीक है? तो इल्म हासिल कर, ठीक है, क्या फरमाया, यानी वो इल्म जिससे हमें पता चले कि पहले किसका हक है उसके बाद किसका हक है। जी बिल्कुल सही फरमाया, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या उनको सवाब नहीं मिलेगा जो मदीना में एतकाफ कर रहे हैं? कि खामखा के इस तरह के जो है ना वो फतवे दिलवाने का, से आपको क्या मिलेगा है? आपको कोई सवाब मिलेगा नहीं, इस तो फतवों में नहीं जाया करें इस तरह के, बस जो है ना वो बात को समझें और फिर अपनी अपनी इस्लाह की बात शुरू में पहले हो चुकी है इस्लाह के लिए, उनको अब मत देखना शुरू हो जाएं कि जो गए थे उन्होंने अपना वक्त जाया कर दिया, उनको सवाब नहीं मिलेगा और वगैरह वगैरह, ये इस तरह चक्करों में मत पड़े, खुद जो है ना वो अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करें। इल्म की इतनी अहमियत है कि पहला पैगाम जो अल्लाह ने बंदों को भेजा वो इल्म से मुतालिक था, लिहाजा इल्म बहुत अहमियत रखता है। साहिब इल्म अल्लाह का मुकर्रब, तो जिस बंदे के पास इल्म होता है वो अल्लाह का मुकर्रब होता है, और जो इल्म से खाली हो वो अल्लाह से दूर। भाई ऐसी मजाक में लिख गए होंगे हजरती वाली वाला जुमला, ऐसे खामखा में लिख गए ना ये वाला जुमला, या बोल गए अपने बयान के अंदर कि जो इल्म से खाली हो वो अल्लाह से दूर होता है, और जो जिसके पास इल्म होता है वो अल्लाह का मुकर्रब होता है। अब हम क्या चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, हम अल्लाह से दूर होना चाहते हैं या अल्लाह के करीब होना चाहते हैं? प्रायोरिटीज सेट करें भाई, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, अल्लाह से करीब होना या अल्लाह से दूर होना, ठीक है ना? अगर अल्लाह से करीब होना चाहते हैं ना तो वो इल्म के बगैर नहीं हो सकते, ठीक है ना? इल्म के बगैर नहीं हो सकते। जहालत के साथ तो बंदा अल्लाह से दूर होता है, ठीक है ना? क्योंकि वो इबादत कर रहा होता है और इबादत में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा होता है, राइट? जैसे कि अभी बात हुई है ना, एहतिकाफ घर में करना था, वहां पर जाके एहतिकाफ कर रही है, तो इस एहतिकाफ से वो अल्लाह के करीब हुई, वो औरतें जो कि वहां पर जाके एहतिकाफ कर रही है, राइट? क्या हुई, अल्लाह के करीब हुई। हाँ जी मुझे तो आई फील वेरी हाई, आई फील वेरी गुड अबाउट इट, तो इस वजह से मैं अल्लाह के करीब हो गई। नबी अलैहिस्सलाम फिर क्यों आए थे दुनिया के अंदर? आप सर समझ आकर के जो चीजें बताई थी वो क्यों बताई थी भाई? किताबें भरने के लिए, किताबें स्याह करने के लिए बस बताई थी, ठीक है ना? करना तो आपने वही था जो आपकी मर्जी है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम क्या रेलिवेंसी पे नबी अलैहिस्सलाम की, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, कि क्या वो जिसके पास इल्म होता है जो कि इल्म रखता है, ठीक है ना, वो और वो जिसके पास इल्म नहीं होता वो बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब, इसको तो सिर्फ जो है ना वो अकल वाले, बल्कि लुब वाले, लुब जो है ना दिस इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ अकल, ठीक है ना, एडवांस्ड अकल जो है ना उसको लुब कहा जाता है भी। तो ये बात जो है ना ये हर बंदे के समझ में नहीं आने वाली है, ये तो अकल वालों के समझ में आ रही है, ठीक है, अब अगर हमारे समझ में नहीं आ रही तो फिर कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है कि हम अकल से पैदल। तो जो बेअकल इंसान है इससे तो हमारी बहस ही नहीं, लेकिन जो अकलमंद है वो कहेगा कि इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं होते। जी, तो इस बात को समझने की जरूरत है, या आपका पीछा जो है ना वो इस अपने आप को खुश करने वाली है, मैं अपने आप को खुश करने में करके जो है ना वो कहता हूँ कि आपके लिए एक मैंडेटरी असाइनमेंट है, ठीक है ना, एज इफ कोई जो है वो मैंडेटरी को मैंडेटरी समझेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग बात को समझते हैं, मानते हैं, ठीक है ना। तो चले उन्हीं के लिए सही मैंडेटरी असाइनमेंट है, ठीक है ना। इस फकीर का, बेतदबीर का लिखा हुआ एक मजमून है इल्म के मुताल, ठीक है ना। और इल्म के जो जो काफिर ने इस बात को समझा कि इनके दीन के अंदर जो है ना वो इल्म की इतनी अहमियत है, लेट मी प्ले ऑन इट, लेट मी एक्सप्लॉइट दिस, ठीक है ना। तो उसके जरिए से जो है ना वो उन्होंने फिर हमारे ऊपर अपना तालीमी निजाम, हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और हम बड़े खुश है ना, हमने बड़ा उसको हाथों हाथ लिया, और पढ़ना अहम है, हमारे दीन का पहला वही का पहला लफ्ज है वो पढ़ना है, तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन काफिर साहब ने जो है ना वो पीछे से कंटेंट ही चेंज कर दिया, पीछे से सोर्सेज ही चेंज कर दी, है ना। और हम जो है वो क्या बोले, बिकॉज लुब से तो बिल्कुल खाली थे, तो इस वजह से हमने उसी को कहा, हाँ भाई यही है, जैसे कि है ना खाना खा रहे थे, पीछे से जो है ना वो किसी ने खाने के अंदर जहर मिला दिया, अब हम खा रहे हैं कि हाँ भाई खाना बड़ा मजे का है, बड़ा लजीज खाना है, खाना तो खाना चाहिए, और क्या जबरदस्त दावत करी है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं कि पीछे से जो है ना वो हमारे दुश्मन ने जहां से वो हमारी किचन से खाना आ रहा था, किचन से खाने की बजाय जो है ना वो बाहर से खाना शुरू हो गया, उसके अंदर तो जहर मिला हुआ है, लेकिन हम बड़े खुशी से उसको खाए चले जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी बुला रहे हैं, आओ तुम भी खाओ मेरे साथ, खाओ खाना बड़ा अहम है। तो यही मामला हमारा है। तो इस वजह से एक आर्टिकल है, ये आज पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है, लेकिन कुछ लोग ने वो उस वक्त थे भी नहीं ग्रुप्स के ऊपर, तो बहरहाल जिन्होंने पहले पढ़ भी लिया था अगर वो भी एक दफा फिर पढ़ लें तो उम्मीद ये है कि बात थोड़ी ज्यादा समझ में आ जाएगी, और इल्मु यजीद बितकरार, ठीक है, दोहराई से तकरार से बात की समझ है ना वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आज फिर आप साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर उसको शेयर कर लेगा, खवातीन में भी और मर्दों में भी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम। बाय।